दिखाने के समान, एक घर में नहीं बहु आई तो बाकी नहीं सुनती अपने साथ, तो नौकरानी घर में झाड़ू दे रही है, तो उसने कहा कि तुमको देखो झाड़ू उठाया, तुम मेरी बात नहीं सुनती है तो मैं तुम्हें इस झाड़ू से तुम्हारे खून को पीटूंगी। इसका मतलब क्या है? वो झाड़ूदार ने नहीं समझ लीजिए किसके लिए, मैंने तो काम ठीक किया। तो वो आपके पीछे से जब रोने लगे कि मैं आपने हमको क्यों ऐसा कहा,
अच्छा तेरे लिए नहीं कहा, अपनी बहू की बतलाने के लिए, जिसे ये
उसको तो डायरेक्ट बता नहीं सकती, इसलिए तुमको तुम्हारे बाह ने उसको शिक्षा दी। इस प्रकार से कृष्ण ने कहा कि तेरे लिए नहीं उपदेश है, ये तो संसार में जो फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए हमने। इसी प्रकार से यहाँ पर गोपियां कृष्ण को कह रहे हैं आहुष्यते नलिना, नलिना में नाभी से जिनका कमल ऐसे कमल ना, कैसे ये खिलता है कमल, कैसे खिलता है सूर्य से, सूर्य से खिलता है। इसलिए हे गुरुदेव आप सूर्य के समान हैं, आपकी किरणें बड़ी प्रखर है, इसका ये तात्पर्य आपके इनके किरणों को उपदेश रूपी किरणों को हम लोग सटने में हम लोग असमर्थ हैं, यहां तक कि हृदय कोष भी जला जा रहा है, सूख रहा है आपके उपदेश से। तो किस लिए कि आप लोग हमारा ध्यान कीजिए, अगाध बोध है अचिंत अगाध बोध है, अचिंत अगाध बोध है मैंने क्या, वो जो ऋषिवासी लोग हैं ब्रह्मा इत्यादि शंकर इत्यादि अगाध बोध है, ये लोग ध्यानस्थ होकर कृष्णंदन चंद्रमा अगाध बोध स्वरूप ये आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का ध्यान इनके हृदय में आता नहीं है। जब ऐसे बड़े बड़े ऋषियों के हृदय में अगाध बोध वाले जो परम योगी हैं, संसार से परम विरक्त है, ऐसे योगियों के हृदय में भी भक्ति के द्वारा निर्मल चित्त भी है तो नहीं आता। हम साधारण द्वारी मूर्ख हम लोग गायों के कंधे को देने वाले दूध का कारोबार करने स्कूल कॉलेज शहर से हमारा कोई संबंध नहीं, तो हम ऐसे आपके चरणों कमलों का भला ध्यान करने में समर्थ हैं, ये तो उन योगियों को ही शिक्षा देनी चाहिए। आपको अपात्र और पात्र का विचार करना चाहिए, इसलिए ऐसा करो ये उपदेश हम लोग को देना, मैंने वो मरुभूमि में कोई बीज या पत्थर पर कोई बीज डाल
बोले
इस तरह से, और आपके चरण कमल जो कैसे हैं संसार को पतिता करण वलंबम, संसार में कूप में जो पड़े हुए हैं, संसार कूप माने सम स्थिति माने क्या, जन्म होता है फिर बढ़ते हैं, फिर इसके बाद में क्रौढ़ होते हैं, इसके बाद में वृद्ध होते हैं, फिर धीरे धीरे और झड़ने लगते हैं, जैसे वृद्धावस्था आती है, और इसके बाद में फिर जाते अस्थि बढ़ते विक्रमते अपक्षीयते विनश्यते, ये छह शरीर के जन्म सबका होगा, जन्म होगा थोड़ा बढ़ेगा, जाते अस्थि बढ़ते बढ़ता है, फिर इसके बाद में बढ़ जाता है पूरा 50 वर्ष तक, इसके बाद में
अपक्षीय
क्षय होने लगता है, इसके बाद में
भी कोई
अत्यंत जड़ वृद्ध होकर के एकदम जीर्ण शीर्ण बन जाता है, और उसके बाद में इस चोले को इसको कहते हैं कोई भी चीज होगा ऐसे ही उसका, इससे प्रति जो आसक्त होगा ये संसार कुछ में पड़ा है, इसमें जन्म जन्म मानता से इसमें लगा, उस कुप में पड़े हुए लोगों के लिए बस एक ही उपाय है आपके चरण कमलों का ध्यान, जो भी लोग तो ध्यान करते हैं, अयोध्या में संसार कुप में पड़ने वाले व्यक्ति भी यदि भगवान के नामों का स्मरण करें उनका ध्यान करें तो उनमें से निकल सकते हैं। गोपियां कर रही हैं,
साधुओं के लिए बड़ी बहुत सुंदर ये आपने शिक्षा दी, किंतु ये बतलाओ कि हम संसार में पड़ी कब, पड़ी कब? बचपन से ही तो हमने आपसे प्रेरित किया और आपके अतिरिक्त और दूसरे को हमने देखा नहीं। हम तो ये चाहते हैं बड़े बड़े योगेश्वर लोग जो ध्यान करते हैं आपका चरण कमल, और ध्यान में आपके चरण कमल नहीं है, और हम चाहते हैं चरण कमलों को जो सबसे बरवश याद आते हैं उनको हम भूल जाए। हमारे जितने दुर्गति का कारण सबसे, हमारे चित्त चंचल का कारण, हमारे क्लेशों का कारण, हमारे विक्षिप्त होने के कारण, हमारा मोह इत्यादि का कारण क्या है? तुम्हारा स्मरण। हम आपको भूलने के लिए जाते हैं जमुना के किनारे, जब जमुना के किनारे जाते हैं देखते हैं तो वही घाट जहां पर हमारे घड़े को छोड़ दिया, या कहीं तुम्हारे घड़े को उठा दू, एक कोई ज्योति एक घड़े को उठा रहे पानी भरने के लिए आए, पानी भरने का उद्देश्य उसका भी वैसे ही उसी के लिए आए, और कृष्ण भी वहां पर पहुंचे, और वो कृष्ण को देखते हुए भी कृष्ण को नहीं देख रहे, और वो पानी में भरे उठा करके जब भर गया तो वो झुक करके वो पानी उठा रही, तो उसको तो परिश्रम लगता है ना, और ये खिन शरीर की कृष्ण वहां से आकर तक मैं खड़ा को उठा दू लगा दूंगे, यह सब हाथ कभी नहीं आप डूब रही है, आप पूजे हो गए आई है उसे, अब वो लीला उनको स्मरण हो रही है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर कृष्ण की स्मृतियां ना, प्रत्येक तरु लता गुलमत सर्वत्र कृष्ण की स्मृतियां वहां छोड़ करके जाती है गुरुराज जगह, वहां पर वे प्रत्येक वृक्ष लता सब कृष्ण की स्मृति जगाती है, जहां भी जाते हैं कृष्ण को भूल नहीं, तो हम आपको भूलने की चेष्टा करते हैं, और आप कहते हैं कि साथ संसार कूप में पड़ी हुई है, तो लोग हमारा ध्यान लगाओ, हमारा तो ऐसे ही ध्यान लगाओ, हम तो छोड़ना चाहते हैं और हमको ऐसे छोड़ना। कृष्ण ने कहा क्या भक्ति कृष्ण निवृत्तर हो गए, मैंने कहा ये संसार के लिए, मैंने कहा तुम लोगों के लिए, तब कृष्ण ने बात जो करके कहा भाई भक्ति ही भूता नाम अमृत प्राय कल्पते, अमृत प्राय मैंने अमृत है किसके लिए, भूता नाम प्राण मात्र के लिए, हमारी जो भक्ति है वो अमृत के समान, अमृत किसको कहते हैं, नामृत इति अमृत, जो कभी नहीं मरता है उसको कहते हैं अमृत, कैसे नहीं मरेगा, बस एक ही उपाय है भगवान के प्रति यदि स्मरण स्मरण कीर्तन श्रवण इत्यादि करें, उनका नाम के उनकी कथाओं का श्रवण, उनके नामों का कीर्तन और उनकी लीलाओं का चिंतन यदि करता है, उनके धाम को आश्रय करके उनके भक्तों का आश्रय करके यदि करें, ये भूता नाम अमृत आय कर, किसी से वो अमृत मन फिर जन्म वर्ग के चक्कर में नहीं आएगा, और भगवान को प्राप्त करके उसका जन्म, किंतु हो गोपियों तुम्हारे अंदर में तो इस भक्ति की अंतिम अंतिम स्थिति है जो तुम्हारे अंदर है, वो भक्त अमृताय कल्पते स्नेह भक्ति नाम पदा, तुम्हारे अंदर में ये स्नेह है, स्नेह किसको कहते हैं, स्नेह माने तरुण को चित्त की वस्ती की कृष्ण संबंधी भावनाओं के द्वारा चित्त आकृष्ट होकर के, और स्नेह माने तरलता की स्थिति में आ जाता है उसको कहते हैं स्नेह, जैसे दो दिनों के बाद में पुत्र आ रहा है बाहर से कहीं से, भैया ने देखा और आंसू में आंसू उसको देखा, यह है तरलता, तो वैसे कृष्ण के प्रति ऐसा यदि स्नेह हो अवस्था को उसको स्नेह कर, तुम्हारा हमारे प्रति ऐसा स्नेह, इसलिए मत आपना मदापना माने मत आपना माने प्राप्ति कराने वाला, अब दोनों को हमको आपन माने करना माने मैं तुमको अपना बना रहा हूं माने मिल रहा हूं, वही हमको तुमको मिला, जो स्नेह है
जिसका धर्मेश है उसको भगवान प्राप्त हो गए ऐसा एक ऐसी स्थिति में हो। भक्ति की अवस्था ही क्या है? भक्ति बढ़ करके स्नेह मान प्रणय राग अनुराग अवस्था में आ गई है, वो पात्र उनको हो गया। इसलिए अब हमारा मिलना तुम्हारा अब कोई रोक नहीं सकता, मैं दो दिन में ही अब सुनता कभी कल की बात नहीं, आज भी हमारे साथ में चल सकते भी
बस कृष्ण उनके मनोरथ कर रहे और उनको लेकर
गोपियों ने कहा, गोपियों मनी श्रीमती राधिका जी ने कहा, उन्होंने ये कहा जा कौमार हर सएव ही बड़क चित्र चैत्र खपार ते चुन मिलित मालती सुरभय कौहा कदम मान महाप्रभु जी इसी भाव को जब कृष्ण को गोपियां ला रही अपने मनोरथ को चढ़ाकर धंधा करने लगा कृष्ण को गोपियों ने कहा जैसे अभी आपको वृंदावन चलना पड़ेगा, ये क्यों चलना पड़ेगा? तो इसलिए आपने कहा जो भी आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम भी ध्यान करेंगे। तो ध्यान में जैसे उनके चरण कमलों को अपने चरण कमलों को उनके हृदय में आप प्रकाशित करते हैं ऐसे आप करेंगे ना, तो कृष्ण का जहां कर सकता हूं ध्यान करो। अच्छी देखो उनका मन और हृदय दो है और हमारा मन और हृदय एक है। मन कहाँ होता है और हृदय कहाँ होता है?
मन मस्तिष्क
और ये हृदय है। मन कुछ विचार करता है, हृदय विचार नहीं करता। बस दे दिया तो सब वस्तु दे दिया, उस प्रेम की प्रधानता यहाँ है और उसमें विवेक की प्रधानता है, वो अच्छा बुरा नाना प्रकार की चिंता करके वो करे आत्मक है और ये प्रेम की प्रधानता है। इसलिए हमारा मन और हृदय दोनों एक है, तो जब हमारा मन है मन में उनके मन में उदित हो रहे हैं तो हमारे मन में ही उदित हुए थे, तो हमारा मन क्या है? वृंदावन। इसलिए वृंदावन में आपके चरण कमल यदि उदित करा दें तो हमारे मन में ही उदित होने के बराबर होगा, इसके लिए और नीचे हम कुछ नहीं चाहते, इसलिए आपको वृंदावन। कृष्ण ने कहा जय ओम वस्तु ऐसा ही होगा मैं चल रहा, गोपियों ने कृष्ण को अपनी मनोरथ में बैठा है और उनको वृंदावन में ला रहे हैं। गोपी आज बड़ी प्रसन्न है, कुछ गोपी आगे हो गई, कुछ गोपी पीछे हो गई, कोई साइड में हो गई, कोई इधर में हो गई, चार हो गई आगे, एक हो गई दाहिने, एक हो गई बाएं, एक हो गई पीछे। किसी प्रकार से अब इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए चारों तरफ से घेर करके उनको ले जा रही है। वहां पर प्रधान गोपी कौन है? महाप्रभु जी स्वयं है, राधा भाव से आकर्ष, इसलिए महाप्रभु जी सबसे सामने हैं और उनके साथ में ये सब चार प्रकार के विपक्ष स्वपक्ष विपक्ष ये चार गोपियां चार दल हैं सामने और एक साइड में एक इस साइड ये छवान और पीछे पीछे वाले हैं कुलीन ग्रामवासी भी आप बोलता चाहते प्रभु वाले,
तो ये विपक्षित नहीं
उनमें चार मैंने सभी गोपियों का सुदाम जैसे राष्ट्र में मिला, इसी प्रकार से ये कीर्तन रूपी राष्ट्र में सभी लोग समझ, इसमें कोई बात विचार सभी लोग इसमें मैंने सब लोग रह रहे लेकर के चल रहे कृष्ण को ले जा रहे हैं। कृष्ण फिर पीछे से यदि नहीं रहे तो पीछे से जरूर भाग गए, हम लोगों ने राष्ट्र समय में विचार नहीं किया, राष्ट्र समय विचार करके यदि ऐसे पहले से ठीक तो हम व्यवस्था कर लेते तो वो नहीं जा सकते, यहाँ पर चले गए या किसी एक प्रकार से कर करके चल। और महाप्रभु जी कह रहे हैं
क्या?
सही तो पराम
सही तो पराम
जहाज गाड़ी दोनों से जी के बिरे में तड़प रही थी। आज उनको मैंने पाया, उनको लेकर के वृंदावन जा रही हूँ। मात्र बीच बीच में अतः राधा की परीक्षा कर रहे हैं। अच्छा एक बात, यदि इसको हम ले जा रहे हैं, इसमें इसकी आंतरिक इच्छा है कि नहीं, ये परीक्षा करना जरूरी है। यदि इसकी आंतरिक इच्छा नहीं हुई और हम लोगों ने जोर से इसको लेकर के खींच करके ले जा रहे हैं, तो वहां जाकर के दुखी होगा, होगा कि नहीं? इसलिए ये परीक्षा कर लू ये सचमुच में प्रेम उन्हें नहीं होना चाहिए। तो अपने मन से हमारे प्रति आकृष्ट होकर के जा रहा है अथवा जा तो रहा है क्योंकि भीतर से दुखी है, मथुरा को कुछ अब ये कैसे पता लगेगा? इसलिए वो जानबूझ करके आगे जो चल रही है तो आगे से वो चल, किंतु आगे कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है, उधर से रथ आ रहा है, जगन्नाथ जी उधर से सामने देख रहे और राधा जी किधर से देख रहे हैं, उनके तरफ में मुड़ करके ऐसे नृत्य कर रहे हैं, रथ के सामने में ऐसे आगे सामने करके नहीं, इतने लोग नृत्य करने वाले होते हैं आगे पीछे साइड किधर, उनकी दृष्टि किधर रहेगी? जगन्नाथ जी के। इसलिए राधा जी मान लो कि सामने से यार बिल्कुल भी कीर्तन करने वाले जा रहे हैं, उनका मुख किधर में, आंखें किधर में? इसलिए राधा जी भी उनके तरफ में देखते हुए कीर्तन कर रहे हैं, अतः महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि अच्छा परीक्षा कर रहे हैं कि हमारे प्रेम से आकर्षित होकर के आ रहा है, स्वयं खुशी मन से या हमारे दबाव में वो जा रहा है, इसके लिए वो पीछे हो जा रहे हैं। महाप्रभु जब पीछे हो गए तो रथ बंद हो तो राधा जी को रोटी, जब श्याम चले आगे गौ चले आगे
श्याम चले पीछे
तो श्याम चले धीरे धीरे
गोल यदि पाचे
यदि
गौ चले
पाचे
पाचा है तो श्याम है धीरे
श्याम है स्थिर, श्याम स्थिर हो जाता चलता नहीं है एकदम रथ बंद। बड़ी खुश हो गई राजा, बड़ी खुश जब पीछे जब गई और रथ को हजारों आदमी खींच रहे हैं,
हाथी लगा रहे
हैं, हाथी भी लगा रहे हैं, महाप्रभु जी पीछे होकर के बैठ गए। आई टोटा या किसने जगन्नाथ टोटा
बलगंड
जगन्नाथ बल्लभ होता और भाव में भी जोर हो गए, आंख से आंसू आ रहे हैं और उस समय में प्रताप रूप बजा जाए पहले दिन की ही घटना और भाग रो करके जब भी वो आंखों से आंसू आ रहे हैं पेट को तकिया बना दिया उसकी जगह इतने प्रताप रूप रहा है। आकर के पहले सब वैष्णव को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में नीचे आ गए, कपड़े बदल दिए, एक धोती पहने, साधारण रूप में महाराजा का रूप होता है उनके चरण में और एक एक श्लोक आ गए, जय कीर्तन ये सब स्कूल और वो महाप्रभु जी सुन करके आ गए और रोना उनका बंद हो गया, उनका ध्यान एकनिष्ठ हो गया उनके शब्द और बोलो बोलो और अमृत पिलाओ और कम विदा हो गया। अब जब वो श्लोक आया तो कथा अमृतम प्राप्त करिए एकदम रहा नहीं गया आंख बंद किए हुए इनको, मैं तो सन्यासी हूँ मेरे पास में कुछ देने के लिए हमारे पास जो कुछ है मैं सदस्य उनको तुम कौन हो तुम कौन हो? ये महाप्रभु जी ने ये नहीं देखा जो ही प्रताप रूप राजा विषय उसको भी उन्होंने पिता करके अपना सदस्य तो वहीं पर महाप्रभु जी श्लोक कर रहे हैं ये पद्यावली है रूप गोस्वामी ने इसको ये श्लोक पढ़ रहे हैं। जब कौमार कौमार का जो हरण करता है वो कौन है? पति है, दोनों में मिलन तो उसके लिए कहेंगे हम जह कौमार जो हमारे प्रियतम है और मैं ही दोनों मिले एक जगह, रेवा नदी का किनारा, चैत्र का महीना बसंत ऋतु, उसमें एक है
बेची
बेक के पेड़ में कटीली पत्तियां होती है, काटा होता है, अपना विषाक्त होता है, किंतु ये बेत का पेड़ इसलिए कहा कि काशिनी में कदम्ब खंडी है, कदम्ब के सुंदर सुंदर थे, और ये सब नदी पहाड़ी नदी छोटी सी नदी
और निर्जन
निर्जन है और फूल विकसित है, बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है,
लेकिन थोड़ा
सा उबक रही है, थोड़ी सी हवा में ही
झुक कर देगा,
ऐसे स्थिति में हम और तुम दोनों हैं, कोई तीसरा नहीं है, देखिए विवाह हम लोगों का नहीं हुआ, प्रथम मिलन हम लोगों का, उसमें में हम लोगों से प्रेम में जो वार्तालाप हुई स्वच्छंद रूप से, आज हमको यही याद आ रही, क्यों आज आ जा रही, तुम वही है मैं वही प्रियतमा, आज कोई बंधन नहीं है मिलने में, हम दोनों की शादी हो गई है, शादी से जा हो गए, पहले शादी नहीं हुई, अब दोनों की शादी हो, आप पति हो गए हैं और मैं तो पत्नी हो गए, और यहाँ पर राजभवन विशाल है, हाथी घोड़े हैं, सास शास्त्री और देवर और कितने लोग भरे घर में है, गुर्जर में ये सब, इसलिए हम दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, कोई चैत्र महीना भी है, कम भी शीतलमंड बह रहा है, सब कुछ है, कभी जातापुरी विराट समुद्र के किनारे भी है, कभी मन नहीं चाहता है, इसमें आनंद नहीं, स्वच्छंद मिलन है, इसलिए वन हम तो वही रेवा थे जोर से जगन्नाथ जी की बलदेव सुभद्रा जी की जय, बोलो जगन्नाथ जी ऐसे हम मदन बज रहे हैं, मदन कैसे बज रहे हैं, मानो मेघ गर्जन कर रहे हैं एक साथ में, बहुत जोर से मेघ एक साथ में,
चौदह मादल वाजी
और कैसे दिया, एक समय गुरु जी के साथ में हम अभी यूं करा याद आ जाए, गुरु महाराज जी के साथ में हम लोग बैठे मेघ में, 108 मृदंग लेकर, एक एक आदमी मृदंग लेकर के 108 मृदंग और करताल लेकर के और निकाल
गए,
उसने मृदंगों का शब्द सुनकर के लिए पूछा, देख गर्जन कर हमारे आंखों से आंसू अपने आप जो जो होगा उनके आंखों से, तो वहां उनके यहां जब मृदंग बजते होंगे और भक्त लोग आनंद से प्रेम में मग्न होकर के लोट को कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं, आपको कैसी दशा, तुम ध्वनि से आप आस गूंज रहा है, मानो आकाश को भी पार करके काल में कहां तक हो सकते चला जाए, उसमें किसी एक की बात को दूसरा नहीं सुन सकता, ऐसी कितने तरह के बाजे बज रहे हैं, कितने क्या क्या हो सो हो रहा है, और महाप्रभु ये श्लोक पढ़ रहे हैं, जय कुमार क्या नरकार खाने में कुटी की आवाज एक होती है, कुटी माने छोटी सी हल्की, नकारखान मैंने जहां पर नगारे बज रहे हैं वो किसी को नहीं सुनाई, ऐसे महाप्रभु जी का यह शब्द किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा, किंतु जो पार्थी भक्त है वो केवल इस चीज को समझे, स्वरूप दामोदर जी उनके अंतर अंतरंग है, राधा जी के भाव को केवल वही समझ सकती है, कौन लगता है, और उसी के अनुरूप में वो सब कार्य करती है, राधा जी रूठ जाती है तो राधा जी को शासन करती है, रूठने पर क्यों राधा जी भीतर से मिलना चाहती है, ऊपर से उठी हुई है, इसलिए उनके भावों को समझ करके उनसे मिलाना चाहती है, इसलिए कभी उनको शासन करती है और कभी कृष्ण को भी शासन करती है,
तुम काम पकड़ो अंधे से ऐसा नहीं करो, तो कृष्ण काम को पकड़ते ऐसे लगता है कि चंदा है।
सबसे बड़ी है
सत्ताईस नहीं बड़ी नहीं
अड़तालीस,
तो बड़ा बड़ा सा प्रश्न है यहाँ पर भाव का पड़ा है, मैंने राजा जी के समस्त भावों को अनुगम करते हुए समझ, इसलिए वो समझ रहे हैं केवल स्वरूप का होगा और कोई नहीं समझ रहा है। और वहां पर एक छोटा सा किशोर बालक खड़ा है, उसको कोई नहीं देख रहा है, और वो जैसे भिन्न होता है ना कमल के ऊपर में नजर आता है, बस उनके मुख की तरफ में भाव भंगी को देख करके और लुप्त होकर के माने उसको ग्रहण कर रहा है। ये कौन है?
ये सही है कृष्ण
के समान तो बालक बालक मैंने 24-25 वर्ष का नहीं या बालक किसे और अधिक नहीं, तो वो बालक बैठा है उस पर किसी की नजर नहीं जा रही, मात्र भाव के अंतरंग भाव में बैठे कभी वोट कोट रहे हैं कभी कुछ हो रहा है, और कभी कभी एक साथ में सातों दलों में जा रहे हैं, यहाँ भी नृत्य कर रहे हैं वहां भी वहां भी वहां भी वहां प्रतापुर राजा जी देख रहे हैं, और उनके पास में साधु भट्टाचार्य हैं प्रतापुर हैं, ये देखिए तो ये क्या हो रहा है यहाँ भी और शासन में स्थल में भी और वहां पर भी जिधर देखते हैं सात तरफ में महाप्रभु एक साथ, ये एक साथ में कैसे हो गया? यही तुम्हारे ऊपर में कृपा हुई, तुमने रथ के आगे झाड़ू दिया था महाराज होकर के भी इसलिए आपको इसलिए आपको ऊपर से नहीं कृपा कर रहे, ऊपर से विषय कर रहे और ऊपर से तुम्हारे अंदर में भक्ति का शोक प्रवाहित कर रहे, ये महाप्रभु जी की कृपा है। ऊपर से बड़े निष्ठुर मने विषय को दर्शन नहीं दे और भीतर से बहुत सी सब शिक्षा है। इसके बाद में रथ यात्रा में समाप्त हो गया, रुक गोस्वामी जी शाम को चले आए हरिदास ठाकुर की कुटीर से और महाप्रभु जी आई कोटा में चले। इसके बाद में सवेरे महाप्रभु जी गए हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए और रुक गोस्वामी गए थे स्नान करने समुद्र में स्वर्ग का स्वर्ग करते हैं स्वर्ग, वहां प्रभु जी ऐसे ही हाथ बढ़ाया छप्पर का फूस का छप्पर का वो मरैया की कुटी देखा कि तालपत्र उनके हाथ में आया, तो तालपत्र निकाल देखा ये बहुत सुंदर सोनाक्षर में लिखा है
उनको रोक्षण कर पाती
देखा तो देखा देखा कि ये तो वही स्वभाव जो हमारे किनको सब गांव में दूसरी है सरदार छात्र मुझे कौन लिखाइए तो आप भी काफी ये लिखा कहा गया स्नान कर ठीक है अच्छा इतने में रूप गोस्वामी स्नान करके आ गए छोटा बच्चा उन्होंने उसके पीठ पर एक थप्पड़ मारा प्यार का थप्पड़ तुमने कैसे हमारी मन की भावना को समझ लिया और उनके साथ में स्वरूप दामों का रामानंद जी और बड़े बड़े भक्त कैसे तुमने जान लिया मात्र ये रूप जी छोटे से बालक ने महाप्रभु का स्नेह जो पाया एकदम मुक्त हो बस नीचे देखने लगे कैसे कहूंगे मैंने कैसे जाना सब दामोदर जी ने कहा बच्चे को स्नेह करके कहे जैसे ये बच्चा के अंदर में आपकी प्रत्यक्ष रूप से कृपा स्फूर्ति बिना आपकी कृपा से आपको कैसे मनु की भावना को जान सकता है इसलिए जरूर आपकी कृपा बड़े प्रसन्न हो गए महाप्रभु अच्छा आप लोग मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं आप लोग सभी लोग इस पर कृपा करें नित्यानंद प्रभु जी अद्वैत आचार्य शुद्ध दामोदर राय रामानंद और नरहरि सरकार और जितने भी महाप्रभु के प्रिय भक्त हैं सबसे जो हमारे भावों को जगत ने ये प्रकाश अपने कृपा किया है और इन भक्तों से भी प्रार्थना करा करके उनके अंदर में वो प्रेम रस की तो वो भाव था ये वहां पर तो ये था ना जैसे अभी पढ़ाना और गोस्वामी ने इसको कृष्ण
सोयं सोयं
कहते हैं कि देखो मैं यही कृष्ण ही है और मैं स्वयं वही राधा हूं हम लोग वृंदावन में जमुना के किनारे बंशीबट के किनारे हम लोग मिले। महीना तापन बसंत ऋतु, वृंदावन में तरह तरह के फूल खिले हुए, बेली चमेली धुई मोगरा मोती, और उसके हवाओं के सुगंध को लेकर, हवा उसके सुगंध को लेकर के इछलाती हुई लड़खड़ाती हुई चल रही है वो हवा। सवेरे जाओ ना, देखो अभी वृंदावन में हम लोग सोए हुए थे सवेरे समय 4 बजे 3 बजे, तो धीरे 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 झोंके हवा के कभी कभी आए, और बीच में क्वेल कुहक पड़ी है, मोर कभी क्या कहते हैं एक आके कर, और कहीं से सुन ली कोई का, कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो वैसे चैत्र का माना बसंत ऋतु, कृष्ण भी वही, मैं भी वही, राधिका वृंदावन में हम दोनों का स्वच्छंद मिलन हुआ था, और यहां वही कृष्ण है वही मैं हूं, किंतु कृष्ण का देश दूसरा है। अब वो गोप कुमार से बन गए क्षत्रिय राजा, द्वारकाधीश बने हुए, इनकी बहुत सी पटरानियां हो गई हैं, 16108 पटरानियां की, 8 पटरानियां और इतनी महेश, और गुरुजन यहां पर हैं, कौन वसुदेव जी देवकी उनकी, पांडव लोग ये सब हैं, विषम पितामह जी हैं, और बड़े बड़े ऋषि महर्षि नारद इत्यादि हैं, सनत कुमार हैं, उसमें जितने भारतवर्ष के अंगिरा इत्यादि ऋषि, कभी नदी अंतरिक्ष इत्यादि सब ऋषि लोग सम्मिलित हैं, और अब उस समय में प्रेम करना सुहाता है उन लोगों के सामने गोपियों से, एक तो विजाति स्थिति हो गई है, व्यक्ति रहने से क्या होगा, परिवेश कैसा होना चाहिए, वो परिवेश, इसलिए कृष्ण से करें वही आप हैं वही मैं हूं, किंतु अभी आपका क्षत्रिय वेश क्षत्रिय भाव क्षत्रिय वेश दूसरा शब्द, हाथ में क्या है बंसी है क्या है तीर गौखंड चक्र सुदर्शन इत्यादि, इसके बेटे आप हैं मेरे पिताजी का नाम वसुदेव, भैया तुम्हारी कौन है, भैया कौन है, इस तरह से वहां पर छत्री भाव और सेनाएं क्या है, इसलिए हम लोग के मिलन में वो आनंद नहीं, स्वाखंड मिलन नहीं है, इसलिए यदि आप इसको छोड़ करके हमारे साथ में वृंदावन पधारिए, वहां पर हम लोगों का जो स्वच्छंद मिलन होगा उसके लिए हमारे मन है, ऐसा कम लिखा है रूप गोस्वामी ने लिखा, रूप गोस्वामी ने एकदम सफाया और अपना प्रेम संचार किया और भक्तों से, यही रथ यात्रा का मूल चीज है, इसमें भी एक है इंद्रसिंह महाराज जी जगन्नाथ को एक पेड़ की दूरी से पेड़ के थर से जगन्नाथ भद्रा बलदेव जी को रुकने जो बनाया, ये प्राणों ने एक पेड़ की थर बांसा हुआ चला रहा था, लाल रंग था उस पर चक्रकार जी का, वो निकल नहीं रहा था समुद्र से, महाराज ने तपस्या की आकाशवाणी हुई इसको समुद्र से निकालो कैसे निकलेगा, तुम्हारा जो पुराना सेवक है कौन दैता लो विश्वावती वो पुलिंग जाति का उसको बुलाओ, और हमारे लिए जो आपको खबर दिया हो वो विद्या पति दिन को बुलाओ, और सोने कारक बनाओ हमारे लिए, सोने कारक बनाकर उनको बुलाया उन लोगों को जाति, और अपने आप गया अब चार की तरह से कृष्ण को बनाना था, कृष्ण ने किसी से बनाने इतना करा स्थानीय होती है और बचता है कोई प्रश्न है उसको लगाते हैं वो करके कृष्ण ने बहुत ताकि मुझे आगे को उसने बना
I'm
समझाएगा
25
जगन्नाथ जी का रथ में आरोहण करते हुए देखा, इस प्रकार से जनता ने उनको रथ में चढ़ाया और फिर चढ़ा करके पहले बलदेव जी, सुभद्रा जी पहले सब उतर जाते हैं,
पहले
बलदेव जी गुरु पद पर जाएंगे, फिर सुभद्रा जी और उसके बाद में कृष्ण कृष्ण जबकि जगन्नाथ देव जी वहां से आते हैं तो लपते हुए आते हैं, इस प्रकार से थोड़ा ऊंचा लंबा चौड़ा विग्रह है और ऊपर में मुकुट विशाल मुकुट रहता है यात्री और इतने लोग बड़े बड़े मजबूत पहलवान जैसे जो लोग कमर में मोटी रेशम की डोरी बांध देते हैं, हाथों में बांधते हैं, कमर में भी बांधते हैं, फिर हाथों से पकड़ते हैं और एक जगह से रूई बनती है, रूई की गर्दी में सैकड़ों की लिखी रूई की गर्दियां बनती हैं, उसमें एक जगह से उठा करके और दूसरी जगह में फेंकते हैं और इतना भार होता है उनको उठा करके वहां से वहां पर रखना बड़ा भारी मुश्किल होता है और उसमें बेलता लोग उनको तरह तरह की गालियां देते हैं और वो उसको प्रसन्न चित्त से सुन करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रथ पर चढ़ाना बड़ा सहज नहीं होता, उनके रथ पर सब लोग उनको पीठ से ऐसे कितने बड़े बड़े पहलवान लोग लग जाते हैं, ऊपर से खींचते हैं, रस्सियों से पकड़ते हैं, थोड़ी दिन गए एक हाथ का है दो हाथ छलक आए नीचे चले आए, बड़ी मुश्किल से डेढ़ हाथ ले गए तो एक हाथ छलक करके फिर नीचे आए, सब लोग पसीने से चूर मार हो जाते हैं, कभी कभी सारे दिन में चढ़ते हैं, कभी दो पहर तक चढ़ पाते हैं, कभी शादी में चढ़ जाते हैं, तो कोई फिर तमाशा नहीं दिख रहा, सचमुच में ऐसा ही होगा, कोई चढ़ा देगा अपने बल से ऐसा नहीं, बहुत बात परीक्षा लोगों ने किया, इसलिए जब उनको इच्छा होती है तब वो चढ़ते, तो इस तरह से वो होने पर राजा महाराज प्रताप रुद्र झाड़ू देते हैं, सोने की झाड़ू करके देते हैं और केवड़ा इत्र और सब चीजों से रास्ते को इंतजार करते उसको, इसमें एक प्रश्न जुड़ा हुआ है, हमने बहुत बार बतलाया, कभी संक्षेप में बतला देते हैं, इनके पिताजी प्रताप मिश्र राजा से पहले महाप्रभु जी से पहले इनके पिताजी थे, इनका नाम समझाना था, वो नौ युवक थे 24-25 वर्ष के, उनकी सगाई होने आ रही थी दक्षिण भारत के विजयनगरम से, वहां के राजा उनसे भी बड़े अधिक समृद्ध थे, वो अपनी लड़की की शादी करना चाहते थे महाराज क्या ना पुरुषोत्तम जाना से जीवराज, जब सब ठीक ठाक हो गया तो घर अपने हाथों से देखने के लिए राजा की स्थिति क्या है, राजभवन कैसा है और सब चीजें कैसी हैं, उसको छद्म वेश में आया देखने के, और उसी समय रथ यात्रा चल रही थी तो महाराज को क्या जाना पुरुषोत्तम जाना जी अपने हाथों से सोने की झाड़ू लगा रहे थे,
सुनो क्या है, इससे हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, ये राजा खुद झाड़ूदार है, इससे अपनी शादी नहीं अपनी गई। वो लौट करके चला गया। पीछे से उनको मालूम हुआ जो वो लोग सगाई करने आने वाले थे वो आए नहीं, क्या बात है, क्या तो नहीं आकर के लोग चले गए, वो आपसे शादी नहीं करेंगे, पर झाड़ूदार से अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। कभी हमको झाड़ूदार मानता है कहा, मैं विश्व ब्रह्मांड के प्रभु नियंता जगन्नाथ जी से के सामने रख कर झाड़ू देता हूँ, मुझे झाड़ूदार मानता है तो ठीक है, ऐसा झाड़ूदार होना भी तो बड़े गौरव की बात है। जगन्नाथ जी के चरण में जाकर के प्रणाम किया और कहा कि इसमें इसका बदला होगा, उस लड़की को जीत करके ले आऊंगा और अपने जागदार के साथ में उसकी शादी। ऐसा सोच करके सेनाओं को लेकर के गया, उस पर आक्रमण किया, किंतु उनके सामने इनकी कुछ चली नहीं, हार आए। विशेष करके हारने का कारण ये हुआ कि वो गणेश जी की सिद्धि उसकी गणेश जी की पूजा करता था, इसलिए गणेश जी सब सहायता करते थे उन युद्ध में, इसलिए वो हार गया। फिर लौट आया हारने के बाद और जगन्नाथ जी के पास में आया, प्रभु तो इस बार फिर मैं चलूंगा आपके सहारे, और यदि इस बार हमारी पराजय हो गई तो मैं अपने प्राणों का भी सर्जन दे दूंगा और समझूंगा आपने मेरी सहायता नहीं की, इसलिए तिथि और बार सब निश्चित करके। और वो राजा कहां गया, कटक राजधानी, और वहां से सेनाओं को लेकर के वो आया और जगन्नाथ जी को प्रणाम करके वहीं से जाएगा। जबकि वो कटक से चला जगन्नाथ पुरी में आया, उसके पहले ही दो नौजुवक एक श्याम रंग का और एक गोरा रंग का, एक लाल घोड़े पर एक सफेद घोड़े पर चढ़कर वहां से निकले। जगन्नाथपुरी के मंदिर के दक्षिण भाग में ये दोनों घोड़े और दोनों सवार वहां पर अभी भी खड़े थे। वो लोग चले, जब पुरी से चलते चलते वो दोनों नौजुवक टीकाहरण में पहुंचे, वहां से करीब करीब 40 माइल या कितना होगा, वहां से पहुंचे। बड़ा पीपर रास्ता, बड़ा जंगल का रास्ता, वहां पर अजीरों के घर है। जब वहां पर पहुंचे तो देखा कि कोई ग्वाली दूध लेकर के, कोई बुढ़िया दही लेकर के आ रही, कोई दही मटका लेकर के आ रही। उन्होंने कहा मैया तुम हमको बड़े गर्मी का दिन है, प्यास लगी हुई है, तो हमें ये मट्ठा या दही हमको पिला देगी, कभी पैसा निकाल राजा से कर सकती। उन्होंने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और निकाल करके उसको दे दिया, ये राजा जानने से वो पहचान जाएगा। ठीक, तो अंगूठी ले ली। उसने सोचा ये तो बड़ी अच्छी चमकीली चीज है, यदि नहीं देगी, नहीं देगा हम तो अंगूठी में इसका मूल्य हो जाएगा, और तो अंगूठी तो ले ले, इसके बाद में राजा दिया न दिया न दिया न दिया, अंगूठी ले ली। इसके बाद में ये दोनों चले गए और राजा इतने में सेनाओं के साथ में वहां पर उपस्थित हुआ। बुढ़ी अगर राजा को कोई देखो तो उनके निकट में पहुंची, ये आपके दो सिपाही आगे गए हैं, उन्होंने हमारे घरे का मटके का सब कुछ उन्होंने दही पी लिया और कायदे से वो राजा उसका पेमेंट करेगा। उन्होंने कहा तुम्हारे पास में कोई साबूत है, जैसे वो हमारे सिपाही थे, हमारा कोई सिपाही आगे गया ही नहीं। अरे नहीं बाबू जी, आपका गया महाराज जी, एक गोरा रंग का है, एक श्यामला रंग का, कमर है कहा। उन्होंने ये अंगूठी निकाल करके दी, अंगूठी निकाल करके देखा, उस पर लिखा हुआ है जगन्नाथ, और यह वही अंगूठी है जिसको राजा ने पहले ही अपने हाथों से बनाकर के ठाकुर जगन्नाथ जी को पहनाया।
तभी यह उठी तो जगन्नाथ देवती है, ये कैसे आ गई? सब उसने सोचा, हमने जो प्रार्थना की है वो प्रार्थना को उन्होंने सुन लिया, इस बार हमारी विजय निश्चित रूप में है, ये दिखलाने के लिए कि हम भक्तों के लिए भी लड़ाई युद्ध करते हैं, इसलिए अब उसको प्रतीति हो गई है युद्ध में हम जरूर जीतेंगे। जगन्नाथ बलदेव जी गए हैं, उसने ताम्र पत्र पर लिख करके उसके लिए राज्य का कुछ भाग उसको दिया, तुम्हारे पंचशरण कौन से बिना किसी करके तुम लोग इस जमीन का दखल और हो तुम लोग। अभी तक भी उन लोगों के पंचशरणों के हाथ में वो जमीन है, उनके पट्टे के ऊपर में अभी तक वो सुरक्षित है। इस तरह से जगन्नाथ जी भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं, एक उदाहरण प्रमाण है। ऐसे ही कितने प्रमाण, एक दो नहीं, बड़े विचित्र विचित्र उनके संबंध में ऐसे प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद में ये गए और उस राजा को युद्ध में हराया और देखा जगन्नाथ और बलदेव दोनों के तरफ से युद्ध कर रहे हैं और गणेश को बुरी तरह से पराजित कर दिया, गणेश को बांध लिया उन दोनों और राजा को दे दिया। राजा गणेश को बांध करके अपने साथ में ले आए और उसकी लड़की को, वो राजा को भाग गया और उसकी लड़की को पकड़ लिए और पकड़ करके अपने साथ में ले आए। उस गणेश को हंड गणेश कहा और उस गणेश को भी पकड़ करके हंड गणेश को ले आए, साथ साथ में एक मोह सिंहासन ले और एक चीज और लाए, ठाकुर जी का विग्रह काम पर, जो कि आजकल यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का गंभीरा है, उसी गंभीरे में सबसे पहले जाने पर उनका दर्शन होता है, राधा कांत ऐतिहासिक विग्रह है। और एक साक्षी गोपाल जी की मूर्ति भी वहीं पर थी, उस साक्षी गोपाल जी की मूर्ति बहुत सुंदर, उनको लेकर के वो साक्षी गोपाल, वो ब्राह्मण दोनों के संबंधी साक्षी देने के लिए वृंदावन से वहां पर गए थे पैदल चल करके, उस विग्रह को भी लेकर के यहाँ आकर के साक्षी गोपाल को रख दिया जगन्नाथ जी के मंदिर में, जगन्नाथ जी के साथ में आगे रख दिया, क्योंकि तो अभी बच्चे हैं गोपाल है ना, इसलिए गोपाल जी को वहां पर सामने रख दिया और राधाकांत जी को महाप्रभु का गंभीर, वहां पर काशीनाथ आचार्य काशी उनको दे दिया कि आप यहाँ पर इनकी पूजा करें, उनके यहाँ पर रख दिया। परंपरा के अनुसार में उसी को बक्रेश्वर पंडित जी ने सबसे पहले पूजा की और उन्होंने अपने शिष्य गोपाल गुरु जी को दी और गोपाल गुरु जी ने ध्यानचंद को दी और इस तरह से परंपरा क्रम से उनकी पूजा की और मोर सिंहासन अपने साथ में कटक ले गए और भंड गणेश को जगन्नाथ जी के मंदिर में पश्चिम दरवाजे पर इसी के उनको रख दिया और अपने वो जो सवार जो दोनों बने हुए थे कृष्ण और बलदेव जी को बड़े पर रख करके और वही दक्षिण दरवाजे जिधर से निकल करके गए थे वहां पर उनको कलांतर में साक्षी गोपाल जी को जब रख दिया वहां सामने, जगन्नाथ जी का कितनी बार भोग आता है, कितनी बार भोग आता है, 56 बार उनके 56 भोग और 36 व्यंजन एक एक भोग में और चावल का भोग लगता है, अन्न का इतना जन मनो मनो भाव लगता है, बड़ी बड़ी हानियों में है 70 मन तो अभी लगता है, उनके समय में ना जाने कितने 70 मन लग रहा होगा और रथ यात्रा के समय में 70 दहाई से भी अधिक बढ़ जाएगा, 700-800 हजार मन इतना उनको भोग लगता है, इतना भोग लगता है कि उनको हाथ धोने की फुर्सत नहीं होगी,
हाथ सूखता ही नहीं,
हाथ सूखता नहीं, धोते हैं हाथ भूख ऐसे पूछा और इतने में दूसरा भोग आया, फिर तीसरा भोग आया, ऐसे उनके भोग लगते हैं। वो पूरे भोग को चटकर जाते थे, गोपाल जी दौड़ करके आगे खा लेते थे। हम लोग को याद है, मुझे ये याद है, जब मेरे पिताजी बैठते थे खाने के लिए भोजन करने के लिए तो हम लोग झट उनकी धोती में बैठ जाते, दो तीन लड़के बैठ जाते उनके खाने के पहले ही आरंभ कर देते और वो हम लोग को खिला करके संतुष्ट होने के बाद में सब्जी खाते, महाराज दशरथ जी के संबंध में ऐसी है, चारों बच्चे बैठ जाते हैं, उनको खिलाने करके अपने खीर कभी कभी लेते हैं और बच्चों को धीरे धीरे गृहस्थों में, गृहस्थ के परिवार में यही आनंद है, यही मधुर है।
यदि ये मधुर ना रहे ना
तो गृहस्थ हो ही नहीं सकता है।
नंदोबा को कृष्ण बलदेव खिलाते,
कृष्ण भी और बलदेव भी नंद बाबा की गोदी में दाहिने पैर से बैठ जाते, आनंद बाबा क्रम से पहले बलदेव जी को फिर इनको खिला करके एक गिलास, फिर उनको खिला करके फिर अपने। इस तरह से वो हमारे साक्षी गोपाल जी जगन्नाथ जी तो अब प्रौढ़ हो गए हैं ना, बड़े हो गए हैं, और ये गोपाल जी अभी छोटे हैं, इसलिए दौड़ करके पहले ही सब खा लेते, इसलिए कुछ बचा नहीं रहता। चार पांच दिनों के बाद में या सप्ताह के बाद में जगन्नाथ जी ने महाराज पुरुषोत्तम जाना को स्वप्न दिया, महाराज आपने ये कहां से ये चंचल लड़का एक पकड़ लिया है, हमारे सामने जो कुछ इतना बात हो जाता है, यह चंचल गोपाल आगे पहुंच करके सब पूरा खा जाता है, हमारे लिए तभी में नहीं रहा, मैं अभी तक निर्जला एकादशी कर रहा हूं, इसलिए कृपा करके आप इसको यहाँ से हटाइए, दूसरा मंदिर बनाइए और उसके लिए भोग की सारी व्यवस्था कराए, नहीं तो मैं भूखों रह जाऊंगा। सुनकर के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, और साथ ही साथ में साक्षी गोपाल नाम का एक शहर बसाया कस्बा, और उसमें उन्होंने उनका मंदिर बनाया, और उसके लिए सैकड़ों बीघे जमीन की व्यवस्था की, और उसमें से जो चावल होता और उसके भोग रात की समस्त व्यवस्था की, जगन्नाथपुरी से ब्राह्मणों का वंश वहां पर गया और जाकर के उनकी सेवा करने लगा। ये साक्षी गोपाल जी का
इसमें क्या रहस्य है कि दोनों एक ही स्वर होते हुए ऐसा वचन,
ये सब लीला विनोद है, यही तो निमेश कटाक्ष में, यही तो दोनों में
नहीं, मेरे विचार से ऐसा लगता है कि ये जगन्नाथ जी जो है ये विप्रबंध के विग्रह हैं, और गोपाल जी जो है संभव लीला के विग्रह हैं, यानी ब्रज लीला के स्वरूप, इस तरह से कोई भावना का भेद है तब ये ऐसा वचन।
वो महाराज विराज द्वारकाधीश है और ये ब्रज का चंचल अभी लड़का है, इन्हें महाराज धीराज अभी बैठे रहेंगे, अपनी पगड़ी बांधने में लग गई, इतने में उन्होंने सब कुछ चला रखा है। ये सब प्रभु के सब विचित्र विचित्र सब लीलाएं हैं, इन्हें ब्रह्म की अपेक्षा इन लोगों का बहुत अधिक महत्व, तो वो है मर्यादा, मर्यादा में रहते बदे हुए हैं, इसलिए मर्यादा के वजह से वो हिलेंगे जुलेंगे नहीं, और इसको मर्यादा का ज्ञान नहीं है, हाथ धोया कि नहीं धोया, क्या हुआ नहीं हुआ,
करने से पहले आ जाएंगे,
उसके पहले ही से वो बिना वाहन करने के पहले ही वो जाकर के खा लेगा, और इनको आवाहन चाहिए, पात्र होना चाहिए और इस तरह से ये सब लीलाएं भी। इसके बाद में लड़की को लेकर के आए और लड़की को कहा जैसे ढूंढो इसके लिए बात, हमारे झाड़ूदारों में कब से सुंदर और युवक लड़का है उसके साथ में इसकी शादी करें, तो हमारे राय रामानंद जी थे और उनके और मंत्री लोग सब थे, उन लोगों से परामर्श किया कि इसको झाड़ूदार में ही एक सुंदर युवक से शादी कर दें, तो यहां महाराज हम आपके मन से सहमत हैं, किंतु अभी जल्दीबाजी की कोई बात नहीं है, देख सुन करके करेंगे, इसका भार हमारे ऊपर नहीं, आप छोड़ दीजिए, आप निश्चिंत रहिए। उन्होंने कहा अच्छी बात है, फिर तुम लोग देख सकर के करना कि इसकी शादी कर दी जाएगी, बोले महाराज जी ठीक है। कुछ दिनों में ही रथ यात्रा आने वाली थी, उन लोगों ने सोच समझ करके पूरा ठीक कर लिया कि जगन्नाथ जी के झाड़ूदार से ही इसकी शादी हो, ऐसा सोच करके वो लोग चुपचाप रहे, और जब जगन्नाथ जी का जब झाड़ू देने लगे उसी समय में उन लोगों को ये बात सुनी और महाराज जी से जाकर और लड़की को सिखला दिए तुम जाओ जैसे झाड़ूदार से हम शादी करके दूसरी से शादी, तो लड़की रोती रोती महाराज जी के चरण पकड़ लिए, मैं इसी जगन्नाथ जी के झाड़ूदार से मैं शादी करूंगी और दूसरे साधु किसी झाड़ूदार से शादी नहीं करूँ। जितने रामानंद जी और उनके जितने मंत्री वर्ग थे सब मंत्रियों ने जाकर के मारा, अब तो इसी झाड़ूदार के साथ में इसकी शादी हम लोग देखना चाहते हैं और हम लोग समर्थन करते हैं। बस उनके कहने से लड़की सुंदरी थी, सब प्रकार से गुणी थी, अंत में उन्होंने उसके शादी हुई। उसी के गर्व से प्रताप रुद्र महाराज जी का जन्म हुआ। इस तरह से वो और पूर्व निष्ठा के अनुसार में वो झाड़ू देने लग गए। इस झाड़ू देने से ही महाराज के महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न। महाप्रभु जी का एक नियम था, जो सब व्यक्ति उनके पास में नहीं जा सकता सबको दर्शन नहीं देते, क्योंकि सब समय भाव में विभोर रहते हैं। विषयी लोगों का अन्न खाने से चित्त मलिन हो जाता है, फिर मन में भजन करने की भावना नहीं रहती, इसलिए विषयी लोगों का अन्न विषयी लोगों का दर्शन महाप्रभु जी बहुत बच करके उनसे रहते हैं। राजा ने देखा जी ये स्वयं भगवान है, प्रताप रूप राजा इंद्र है, सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपना अनुभव उनको बतलाया, जो हमने उनका सार्वभौम रूप दर्शन किया। रामानंद से भी उनको पता चला ये यथातथ में कृष्ण ही हैं, इसलिए वो उनका दर्शन करना चाहते, किंतु महाप्रभु जी उसको टाल रहे थे कि मैं कभी उनसे नहीं मिलूंगा, विषय का दर्शन मैं नहीं करूंगा। राजा ने बहुत चेष्टा किया, नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी, यहाँ तक कि परमानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु जी से भी आग्रह किया, किंतु महाप्रभु जी बोले अच्छा तुम लोगों की इच्छा है जब मैं उसे मिलूं तो एक बात मैं करता हूँ, गोविंद मेरा वो और कॉपी और तो मेरे पास में कुछ है नहीं, उठाओ और हम लोग चले जाएंगे जहाँ इच्छा अलारनाथ या जहाँ भी इच्छा हो चले। गोविंद गुरु डोर कॉपी लेकर के चलने लगा, महाप्रभु जी उठ करके खड़े हो गए, तब नित्यानंद प्रभु जी स्वरूप दामोदर सब लोगों ने कहा ये प्रभु आप ऐसा मत करो, अब हम आपको हम नहीं करेंगे, आप स्वतंत्र इच्छा आपकी है जैसा चाहेंगे वैसा ही आप उनको दर्शन दें और न दें, भक्तों का दर्शन खुद ही देंगे, हम लोग एक दिन देखेंगे, हम लोग को कहना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग कह रहे हैं और आप नहीं दर्शन
देंगे,
इसलिए हम देखेंगे एक दिन खुद कि आप स्वयं ही बिना जात बिना किसी के कहे हुए उनको दर्शन दें। खैर जैसा हो हम लोग आपको किसी विषय में तंग नहीं करेंगे, आप नहीं करें, अंत में वहां पर रहे। महाप्रभु जी का यह नियम बड़ा कठोर था, इसी नहीं भक्ति के विषय में सबक ही, भक्त लोग जो हैं जब तक ही परोपेक्षा करेंगे, परापेक्षा परापेक्षा माने क्या, दूसरों की अपने भजन में अपेक्षा रखेंगे, वो खिलाएगा तो मैं खाऊंगा तो मैं भजन, वो ये चीज देगा तो होगा क्या, खिलाएगा किंतु कुछ अपनी बातों को आपके ऊपर में रखेगा, आप उसके लिए बाध्य होंगे, एक आदमी ने आपको खिला पिला करके कुछ दे करके आपको बाध्य किया, महाराज जी आपको कल हमारे घर में चलना पड़ेगा, कब चलना पड़ेगा, 12 बजे चलना पड़ेगा दोपहर को, अरे भाई मैं तो उस समय निकलता नहीं हूँ, जो वहां पर आप भी पहुंचे, नहीं महाराज जी आपको चल रहा है, क्या करेंगे ये बाध्य होंगे कि नहीं, मान लेकिन सवेरे दोपहर सवेरे 8-9 बजे का समय वो चिंतन करके अपना संध्या निक में लगे हुए हैं और उस समय जो खिलाने पिलाने ना देने वाला वो कहेगा क्या, महाराज जी आपको अभी चलना ही है, वो क्या करेंगे, मना कर सकेंगे, उसने कहा कि हम आपको इतना रुपया देंगे एक अच्छी सी गलिया लेने के लिए, एक मंदिर में रूम बनाने के लिए और लोगों के लिए कुछ, हम उस समय में उसकी बातों की उपेक्षा नहीं कर सकते, इसलिए महाप्रभु जी के पास में केवल एक लव रोटी थी और कुछ नहीं, डोर कॉफी बस। जब तक कोई परपेक्षा करेगा भजन नहीं हो सकता है, इसलिए महाप्रभु जी बड़े इस विषय में कठोर रहे। हम लोग आप इसीलिए तरह तरह की चिंताएं हैं, लाखों प्रकार की चिंताएं हैं। महाप्रभु जी को किस चीज की चिंता है, कैसे कृष्ण मिलेंगे, बस इसी की चिंता है। रूप गोस्वामी को किस चीज की चिंता है, काम और प्राण, कहां पाऊं, कहां जाऊं,
कहां पाऊं,
भजन करूं, कहे कही वो कथा केवा जने दुख, बस उनको यही एक समस्या है। और हमारी समस्या क्या है, ये घर खराब हो गया है, ये मंदिर करना है, वो ये करना है, वो ये करना है, इधर करना है, जितने लड़के हैं इनके खाने पीने रहने सब की व्यवस्था, ये करना है, उधर करना है, लाखों प्रकार की समस्या है। घर में झाड़ू देना है, ये भी एक समस्या है। महाप्रभु जी को क्या समस्या है, गंभीरा ने कितने हाथ का है, गंभीरा तीन चार हाथ होगा चौड़ा और तीन चार हाथ ऊंचा बस इतना, और वो कभी झाड़ू देने का प्रश्न ही नहीं हुआ। गोविंद जी हैं जो कुछ करते हैं, किसी चीज की खाने पीने कोई चीज की कोई समस्या नहीं। भजन यदि होगा उस प्रकार से ऐसे लोग
गंभीर शब्द का अर्थ तो दूसरा कुछ किया है कि राधा जी के गंभीर भाव के आस्वादन तो गंभीर आ जाते
हैं, ऐसे वो तो पीछे की बात वो तो है। तो इस तरह से उसमें रहते हैं, बस एक ही चिंता है, एक ही बात। हम लोग कितनी समस्याएं पैदा अपने आप कर लेते हैं क्योंकि उनको समस्या है, इसलिए एकाग्र चित्त होकर के एक मुखी उनका भजन चलता था। हम लोगों का भी वैसे ही एक मुख भजन यदि चले, गुरु के शरणागत होकर के गुरु के आदेश को पालन करते हुए अपने भजन करके उनके आनंद, बस एक ही चिंता एक ही विषय, तब ये भजन होगा, ऐसे भजन नहीं देता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कठोर व्रत रखा था, इसलिए कि यदि हम हैं तो इनका ऐसे शासन हो करके और ऐसे ही चले। बद्ध जी शासन नहीं मानना चाहते, वो अपने मन से जो कुछ बातें आती हैं वो समस्या पैदा कर देता है। महाप्रभु जी इन चीज रोकने के लिए छोटे हरिदास का शासन किया और भी अपने भक्तों का शासन किया, ये गदाधर पंडित को उनके गुरु के पास में भेजा, कैसे वैष्णव के साथ में मिलन होता है, वैष्णव को कैसे जाना जाता है ये तो सब दिखलाया, कैसे वैष्णव से हरि कथा सुनी जाती है ये प्रद्युम्न मिश्र को राय रामानंद के पास में भेज करके ये बताया। इस तरह से उनके समस्त भजन के एक एक आदर्श, यदि हम उन आदर्शों को पालन करें तो भजन अन्यथा होना बड़ा भाई कठिन है। इसलिए प्रतापरूप राजा जी झाड़ू देने लगते, अतर इत्र इत्यादि से केवड़ा से वो जमीन को भिजाने लगते। धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु जी भक्तों की चार टोलियों में बांट दिया भक्तों को, और चार टोलियों में कितने मृदंग दिए, दो दो दादी आठ
सात टोलियों
वो पीछे से चार टोली अपने गणों को विभाग किया चार टोलियों में, और उनको सामने में कीर्तन कराने के लिए दिया, और एक शांतिपुर से टोली आई उसको पीछे दे दिया, एक टोली आई कुलिंग ग्राम से, कौन कुलिंग ग्राम, बुद्धि जिन्होंने चैतन्य कृष्ण लीला
श्री कृष्ण
विजय कर लिया, जिसमें एक वाक्य के तहत आचे नंद नंदन मोर एक प्राणनाथ, एक वाक्य कृष्ण नंद नंदन ही हमारे प्राणनाथ है उसमें दिखाए, इसलिए उनके वंश के हाथ में महाप्रभु जी बिक गए। इसी बात के लिए वो लोग एक दल लेकर के आए, और एक दल और कहाँ का, शांतिपुर, शांतिपुर का एक उनका दल और एक दल श्रीखंड, श्रीखंड का
श्रीखंड नरहरि,
नरहरि और ये सब रामानंद और बसु वासुदेव घोष इत्यादि ये सब लोग आए, और चार दल, ये सात दलों में 14 मादल बजने लगे और भक्त लोग कीर्तन करके और जय जगन्नाथ जय बलदेव बजाय सुभद्रा देवी की जय करके आगे महाप्रभु जी की इच्छा भी जो मैं नित्य कहूं, हाथ जोड़ करके एकदम निश्चित चित्त होकर के उन्होंने वंदना आरंभ की। नमो ब्रह्मण देवाय वो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण देवाय, ब्रह्मण माने ब्रह्मण देवाय, ब्रह्मण्य देव माने वशिष्ठ इत्यादि ब्रह्मण्य ब्राह्मण तत् भगवत भक्त ब्रह्म को जानने वाले विष्णु को जानने वाले देवाय वो ब्रह्मण हिताय च वो ब्राह्मणों के हितकारी हैं, जगत हिताय जगत के हित करने वाले कृष्णाय गोविंदाय और बीच में एक छोड़ दिया नमो नमः स्वाहा है ना बीच में एक को छोड़ दिया अभी क्यों छोड़ दिया किंतु दो दे दिया ना कृष्णाय गोविंदाय एक छोड़ दिया नमो नमः। जगन्नाथ जी के लिए कह रहे हैं जयति जयति देवो देवकी नंदनो असौ जयति जयति कृष्ण जयति जयति मेघ श्यामो जयति जयति पृथ्वी जयति जयति देव देवकी नंदनो असौ। जगन्नाथ जी की वंदना कर रहे हैं इसलिए महाप्रभु जी वसुदेव और देवकी के नंदन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं द्वारका भी से इसलिए जगन्नाथ। और पहले संबोधन करके जयति जयति कृष्ण विष्णी वंश प्रदीप विष्णी वंश के ये प्रदीप हैं जयति जयति मेघ श्यामल कुंभलांग जयति जयति पृथ्वी भार नाश हो धर्म की रक्षा करने के लिए अशुभ का विनाश करने के लिए ये देवी नंदन है वही जगन्नाथ देव के रूप में उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम करके उनको भीतर में ऐसा बाजे ये मैंने तो प्रणाम किया किंतु वह पूरा प्रणाम रह गया पूरा प्रणाम नहीं रहा इसलिए पीछे से फिर उस गलती को ठीक करते हुए फिर से वो गा रहे हैं जयति जन निवास जयति जन निवास हो देवकी जन्मवाद देवकी जन्मवाद पहले उन्होंने कहा ना देवकी नंदनो असौ आप वो थोड़ा सा भाव को ऊपर ले करके देखे हमारे भक्तों को ये अच्छा नहीं लगा इसे हमारे भक्तों के मुख के तरफ में देखा ना तो उनको प्रसन्न चित्त नहीं देखा और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए फिर एक दूसरे प्रणाम मंत्र को दे रहे हैं वो प्रणाम मंत्र क्या है और जन निवासो
निवास
सब लोगों के हृदय में निवास करने वाले जो परमात्मा है और देवकी के पुत्र हैं यह बादल ये लोगों का कहना मात्र प्रवाद है वास्तविक में ये ठीक नहीं है। जदुबर परिषद जन्म बादल ये भी बात है ये जदुबरों के परिषद हैं
जादवों के पार्षद
जादव इनके परिकर हैं
कुछ
जदु लोग जादव लोग इनके विष्णु वंश वाले जितने लोग हैं इनके परिकर ये भी बात है स्वर्ग स्वयोगी रशन नभावन स्वयोगी अशन अधर्म अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी के भार को अपने करते हैं दूर करने वाले हैं। ये भी बात मात्र है, ये भी लोगों का कहना पूरा ठीक नहीं है। और स्थिर चल अपनी जी लगना सुस्मित से मुखेना, किंतु स्थिर चार जितने भी हैं स्थाव जंगम समस्त प्राणी सब विग्रह की दुख को हरण करने वाले सुस्मित सिंह मुखे न अपने सुंदर सुस्मित मुखों से ब्रजपुर की स्त्रियों को ब्रज पूर्व वनिता वर्धयन काम देवम काम को प्रेम को बढ़ाने के लिए जो आए हैं उसी के काम के देवता जो काम देव हैं उनको मैं प्रणाम फिर कर रहे हैं। दूसरे रूप में साथ फिर कर रहे हैं जय की जन्म बात हो देव की जन्म बात ये तो बाद में उन्होंने अपने अंश अंश के द्वारा देवकी के पुत्र रूप में हुए हैं धर्म की स्थापना की है और अधर्म का नाश उन्होंने विनाश किया है। ये कुछ हद तक ठीक होने पर भी पूरा ठीक नहीं है, है कुछ हद तक ठीक किंतु फिर जदुबर परिषद जदु माने यहां जदु के पुत्र हुए कौन तो जदु का पुत्र हुए अजामिल अजामिल के पुत्र हुए दो पुत्र एक नंदबा परजन्य और दूसरे सुरसेन सुरसेन के हुए वसुदेव जी और उधर में परजन्य के हुए नंद फिर नंद बाबा के हुए कृष्ण और उधर बस के हुए कृष्ण ये दोनों कृष्ण सम्मिलित हुए इसलिए नंद बाबा भी जदुबर परिषद ये भी जदुकुल में उत्पन्न होने वाले हैं इसलिए जदुबर परिषद नंद बाबा यशोदा इत्यादि और जितने देव लोग हैं ये लोग भी उनके परिजन माता पिता भाई बंधु सखा हैं ये बात है। और स्वय दोर्भी रस्यन अधर्म न को आपको हटा दो तो धर्म अपने बाहुओं से लोगों को ब्रज की वनिताओं को जो विवाहिताएं नहीं है उनको भी अलिंगन करके धर्म को उल्लंघन किया उल्लंघन करके क्या किया फिर चरा प्रिय लगना क्यों उन्हीं का नहीं ब्रज के जितने भी लता पता स्थावर जंगम सबके विरह को दूरी दूर कर दिया जिन्होंने अपने शिव मुखारविंद से और शिव मुखे न बंसी बाधे न अपने शिव मुख से बंसी बजाते हुए सब प्राणियों के विरह विकाप को दूर कर दिया ब्रजपुर बनता है पूर्व मैंने मथुरापुरी और पीछे से उनकी तो बाकी क्या ये ब्रज में तो ऐसा किया नहीं उन लोगों को भी छिटके पुटके कुछ गुंडों से उनको भी परित्यक्त कर दिया और विशेष करके ब्रज की ब्रजपुर की वनिताओं को गोप्रमणियों को के काम को वर्णन करने वाले इस काम देव की कोशिश की मैं तो यही जगन्नाथ फिर कहते हैं प्रणाम करते हैं ना हम विप्रो न चर्पते नाश्यो सुंदर ना हम बरणी न चर्पते नो किंतु प्रो रथ यात्रा में प्रवेश करने के लिए आरंभ करने के लिए ये मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए ये आत्मशुद्धि का ये मंत्र है जैसे आत्मशुद्धि के लिए कहते हैं ना ओम विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्तु सूर्या दीवी विचक्षुरागतम ओम तत् सत् इत्यादि करते हैं ये शुद्धि मंत्र है आत्मा का। उसी तरह से ये हमारे चैतन्य महाप्रभु के बाद में आत्मशुद्धि के लिए ये प्रणाम मंत्र ये चैतन्य महाप्रभु जी का ये सिंह से निकला हुआ ये वचन है श्लोक उसमें कह रहे हैं ना हम विप्रो, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं, ना हम वर्ण, मैं ब्रह्मचारी वानप्रस्थ या संन्यासी। ये जो आठ प्रकार के वर्ण और आश्रम के धर्म हैं, इनमें मैं कोई भी नहीं हूं। भजन करते समय गुरु से दीक्षा लेने के पहले इस चीज को छोड़ दिया जाए, संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया जाए। अब संसार में भाई और बहन जो इस शरीर से होता है, अब ये संबंध रहा कि नहीं? आजकल लोगों में भ्रांत धारणा फैली है कि एक ही गुरु से पति और पत्नी को दीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भाई बहन हो जाने से अब हमारा ये संबंध खत्म हो जाएगा, तो संसार ही नष्ट हो गया। अधिकांश लोगों ने, और गुरु भी उनको ऐसे ही मिल जाते हैं, देहात में बुद्धि वाले मूर्ख लोग मिल जाते हैं, ये सबका निराकरण नहीं कहते हाँ ये बात ठीक है, एक गुरु से स्त्री को और दूसरे गुरु से पुरुष को दीक्षा लेना चाहिए। अरे ये संसार का ये कोई संबंध करने वाला मंत्र नहीं है, ये तो बद्ध जीवों को भव सागर से पार करके भगवान के चरणों में पहुंचा देने के लिए दीक्षा होती है, संसार करने के लिए हरी नहीं है। इसलिए जब हम गुरु ये कहता है कि तुम ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, तुम ब्रह्मचारी गृहस्थ मान प्रसिद्ध संसार का कोई चीज नहीं हो, तुम तो भगवत दास दास के दास के दास हो, गोपी भर तुम पद कमल हो, दास दासान दास, तुम तो गोपियों के जो भरता है प्रभु एकमात्र कृष्णचंद्र, उनके दासों के दासों के दासों के और विशेष भक्तों के लिए उसका गोपी भर तुम ही, गोपियों के प्राण बल्ल भी हमारे इस रूप में उसको ग्रहण करता है। इसलिए जीव का स्वरूप यहां बतलाया गया, भजन राज्य में प्रवेश करने के लिए, रथ यात्रा में प्रवेश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रथ यात्रा में जो भाव है उनको समझने के लिए सबसे पहले इस श्लोक की जरूरत है। मैं संसार का कोई भी नहीं हूं, यह सबसे पहले हृदय में आ जाए। मैं क्या हूं? मैं भगवत दास, मैं भगवान का शिवम, मैं विभुचित जो वस्तु भगवान है विभु चैतन्य, मैं उनका अणु चैतन्य, जैसे उनमें कर्तापन बुद्धापन भोक्तापन है, उसी प्रकार से हमें भी अणु रूप में भोक्ता भोग्य और कर्तापन और बुद्धा मैंने अनुभव करने वाला, मैं भी सब वैसे जैसे उनका शरीर है मध्यमाता, वैसे हमारा भी सच्चिदानंदमय एक बहुत सुंदर शरीर है जो अभी माया के द्वारा अच्छा चैतन्य महाप्रभु के इस रथ यात्रा के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करेंगे, ये सब अपने आप चीजें स्पष्ट हो।
जी भूतता है या नहीं
है, भगवान का रस सेवा का रस अनुभव करता है, अनुभव करना माने भोग करना,
उसको तो कहीं कहा गया है कि भगवान ही एकमात्र होता है,
और जीव को बुद्धा कहा गया है, बुद्धा माने क्या, अनुभव करने वाला, अनुभव माने क्या, ये सुख है ये दुख है अनुभव,
दर्शन उपलब्धि।
इसलिए भगवान की सेवा का जो आनंद है, आनंद नहीं जाने पर भी उसका वो मिलता है शुद्ध अवस्था, वो तो कहा गया भोक्ता नहीं है, बद्ध जीव के भावना को लेकर के बदला है, जीव भोक्ता नहीं है भोग्य, वहां पर दूसरा भाव हम लोग भी ऐसे दृढ़ विश्वास रखेंगे हम भोक्ता नहीं है हम भोग्य हैं, और हम संसार की कोई वस्तु स्त्री पुरुष ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम नहीं है, हम लोग जो कुछ भी झगड़ा और बखेड़ा और समस्या है ये प्राकृतिक जड़ देह में आत्मबुद्धि के वजह से, भजन के बल से यदि आत्मबुद्धि हमारी शुद्ध होती है, आत्मबुद्धि दूर हो जाती है, तो ये भजन का ये लक्षण है, और यदि यह नहीं गया तो समझो कि भजन एकदम नहीं हो रहा है। पुनरपि करिला प्रणाम जो हस्त भक्तवान वंदे भगवान महाप्रभु जी ने हाथ जोड़कर करना है और भक्त लोग भी सभी लोग उनके साथ साथ में वंदना महाप्रभु जी दंड रूप से नृत्य करना किया। उस समय में श्वेत स्तंभ श्वेत पुलक अश्रु पंप वैवर्ण नाना प्रकार की विवशता उनके अंगों में देखी। तो किस लिए देख रहे हैं? बहुत दिनों के बाद में हमारे प्राणनाथ ये कौन देख रहा है? महाप्रभु जी कृष्ण है, कृष्ण देख रहे हैं किंतु राधा भाव में अब कृष्ण में हूं ये भूल गए। अब बहुत दिनों के बाद में यह है और कुरुक्षेत्र से वृंदावन की तरफ में ले आ रहे हैं, बस यही उनकी एक भावना है। इसलिए कभी कभी प्रेम में उन्मादित होकर के कभी गिर पड़ते हैं, कभी मूर्छित हो जाते हैं, कभी आनंद से कंटक के समान अश्रु उनके खड़े हो जाते हैं। सुवर्ण पर्वत जैसे धूप है, जैसे सोना का कोई बुद्धि है पर्वत मिट्टी में रोकने लगता है, ऐसे महाप्रभु जी धाम से गिर जाते हैं। जान बुझ करके नहीं, नित्यानंद प्रभु दो ही हाथ पसा लिया प्रभु रे धरी ले जाए आस पास धानिया प्रभु पाछे भूले आचार्य करिया हुनका हरि बोल ये दो महाप्रभु जी की शाखाएं हैं।
मूल शाखा,
मूल शाखा नित्यानंद प्रभु जी उनके साथ साथ में हाथ ऐसे करके पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं किंतु महाप्रभु जी का लाभ नहीं पा रहे हैं, उनका स्पष्ट नहीं पा रहे। कभी यहां देखते तो महाप्रभु कहां घर में चले गए और उधर में अद्वैताचार्य हरि बोल करके उनके पीछे पीछे उनको संभालने के लिए दौड़ रहे हैं। आप महाप्रभु जी भावित होकर कहीं गिर में जाए और भीड़ में कुचल न जाए, उनको कोई आघात न लगे, इसलिए तीन मंडल बनाए गए रक्षा करने के लिए। प्रथम मंडल है नित्यानंद महाभाव, पहले नित्यानंद प्रभु जी चारों तरफ से उनको घेर करके रखे हैं और दूसरा काशीश्वर मुकुंद इत्यादि बड़े बड़े जो उनके भक्त हैं उन्होंने हाथ पकड़ करके एक एक दूसरे से एक मंडल बना दिया। फिर उसके बाद में प्रताप रुद्र राजा अपने सेनापति और बड़े बड़े कमांडरों को लेकर के चारों तरफ से उनको घेर कर रखता है। इसके बाद में प्रताप रुद्र के पीछे उनके जितने भी और बड़े बड़े ये होंगे सुपरिंटेंडेंट और कौन कौन
मेजर कैप्टन
ये सब लोग उनके पीछे पीछे में और इसके बाद में लाखों कोटि भीड़ उनके सामने महाप्रभु जी का नित्य देख जगन्नाथ जी का देखना भूल गए और जय जयकार तो कर रहे हैं जगन्नाथ जी का और महाप्रभु जी को दर्शन सब करने लगे। इसी समय में एक घटना हो गई, श्रीनिवास जी महाप्रभु जी का नित्य देखते देखते अपना नाचना भूल गए। महाप्रभु जी के लिए नर्तक थे किंतु अपना नाचना भूल गए और एकदम स्थिर होकर के निर्निमेष नेत्रों से महाप्रभु जी का नृत्य देखने लग गए। महाप्रभु जी कभी इधर नृत्य करके जाते हैं तो थोड़ा सा इधर झुक जाते हैं, महाप्रभु उधर जाते हैं तो थोड़ा सा उधर झुक जाते हैं, कभी सीधे खड़े हो जाते हैं। पीछे में राजा प्रताप रुद्र जी खड़े हैं, उनके साथ में उनके कमांडर लोग हैं, उनके रक्षक सेनापति इत्यादि उनको देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, सब समय बात कर रहे हैं, इन पर कोई कुछ कर न दे। अब वो जब ये एक तक से देख रहे हैं महाराज प्रताप रुद्र सामने से तो उस समय में ये कभी ऐसे कर देते हैं तो इनके सामने भी आ जाते हैं, कभी उधर जाते हैं तो उधर में हो जाता है। तो उनका सेनापति एक बार
हरिचंदन
नाम का उनको हटा दिया, बलवान लंबा चौड़ा ना और शिवाजी को एक किनारे में हटा दिया। तो उन्होंने पीछे देखा किंतु कुछ नहीं कहा। फिर दूसरी बात किया, तीसरी बात जो किया राशि का पीछे से इधर देख रहा मारा एकदम इधर से थप्पड़ लग गया उनको, जबकि थप्पड़ लगने से कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, बहुत लंबा चौड़ा आदमी आघात से नहीं रहा किंतु अपमानित हुआ। ये इतने बड़े विशाल राज्य का मैं सेनापति होकर के और हमको उसने मार दिया, तो वो कम कमाया हुआ यदि कुछ करने के लिए पकड़ का तो ऐसे खेल करके फेंक देगा, किंतु जब ऐसा किया तो प्रताप हुआ जन उसका खबरदार कुछ कर किया भाई तुम्हारा परम सौभाग्य है उनके भक्तों का थप्पड़ तुम्हारे डाल कर बन गया, तुम सौभाग्य समझो आज तुम्हारा कुछ कल्याण होने वाला, वो मन महसूस करके। इससे क्या मालूम होता है महाराज प्रताप रुद्र का महाप्रभु जी के प्रति कितना आभार है। उन्होंने महाप्रभु जी से रथ यात्रा से पहले उनके दर्शन की बहुत चेष्टा की, जब महाप्रभु जी ने दर्शन नहीं दिया यहां तक कि वहां से चलने के लिए राजी हो गए, उन्होंने कहा रामानंद जी मैं एक उपाय करता हूं तुम्हारा दर्शन करना हो जाएगा और तुमको जरूर दर्शन होगा ये भी मैं कर देता हूं। उन्होंने कहा एक बात करो तुम्हारा लड़का बहुत सुंदर है और श्यामल रंग का है और उसके ऊपर में पानी कैसे मुक्ते कपड़ ऊपर में जैसे मुख का पानी होता है ऐसा पानी लावण्य जिसको कहते हैं बहुत सुंदर उसको पीली धोती पहना दी पीले कपड़े और पीली चादर उनको दे दी और वैसे ही कृष्ण जैसा मुकुट उनको पहना दिया बच्चे को और अपने हाथों से पकड़ करके उस बच्चे को महाप्रभु जी के सामने महाप्रभु बस देखते ही रह गए इतना सुंदर हो मानो साक्षात कृष्ण ही खड़े हूं बस बच्चे को बुला करके उन्होंने आगे देख करके बैठाया तुम्हारा नाम क्या है बड़े मधुर से उसे बातचीत करने लगे कृष्ण की स्मृति होने लगी देख करके उनको रोमांच और कम पर अश्रु होने लगे। फिर रामानंद ने कहा जब इतना करते हैं कृपा तो इस बच्चे पर एक कृपा कीजिए अपनी लंगोटी का एक टुकड़ा कॉफी का एक टुकड़ा परिवार बस एक परिवार का टुकड़ा लेकर के दे दिया और उसके बच्चे के सिर में और उसको लेकर के बड़े प्रेम के साथ में प्रताप रूप की गोदी में लेकर के पीछे लेकर के बैठा। ये देखो महापुरुष की जो करुणा हुई महापुरुष ने इसका आदर किया मतलब है उनको जरूर नहीं तो उस बच्चे को कैसे आदर। इसके बाद में नित्यानंद प्रभु जी स्वरूप दामोदर राय रामानंद अद्वैत आचार्य सब ने भी करके कुछ विचार किया प्रताप रुद्र राजा जैसे भक्त राजा को ऊपर में महाप्रभु की कृपा होनी चाहिए। महाप्रभु जी ने कहा प्रतिज्ञा की है मैं इस विषयी राजा को दर्शन नहीं दूंगा। जैसे इन लोगों ने कहा कि वो तो परम भक्त है विषयी तो है नहीं इन्होंने महाप्रभु जी ने कहा एक विषरहित सर्प है और यदि ऐसा खड़ा हो जाता है ना उसका विष का दांत तोड़ दिया जाए तो ऐसे देखने से डर लगता है कि यदि काट दिया आदमी भागता है। एक मरा हुआ सांप ऐसे पड़ा हुआ है उसको देख करके आदमी भिदक जाता है तो आखिर ये सांप ही तो है ना मरा हुआ ही लग जाता है। इसलिए विषयी होने पर भक्त होने पर विषयी राजा जो है ना ये राजा नाम ही नहीं वो चीज है जो आदमी को भक्तों को अपने भक्ति पक्ष से चुप करा देता है। इसलिए मैंने दर्शन उन लोगों ने देखा कि और उनका मन कुछ पवन हो गया है उसमें झाड़ू दी उनका मन कर इसलिए उन्होंने कहा कि देखो ऐसा करना महाप्रभु जी रथ यात्रा में चलेंगे नित्य करते करते जब थक जाएंगे और उस समय में तुम देश धारण अपना छोड़ करके राजा साधारण रूप में जाकर के इनको राजपंच अध्याय के तीसरे 31वें अध्याय के श्लोकों को तुम बड़े सुनीले कंठ से पाठ कर अब यही सोच करके वो नित्य देखा नित्य देखते हुए उसने देखा क्या वो महाप्रभु जी एक दल में नित्य कर रहे इतने में देखा इधर दूसरे दल में देखा जैसे आज वहां पर भी नित्य कर रहे तीसरे में देखा वहां पर चौथे में भी देखा सातों दलों में उन्होंने देखा जहां उनकी देशी जाति वहीं उनको देखा उन्होंने कहा उनसे सार्वभौमाचार्य मैं एक विचित्र बात देख रहा हूं मैं क्या देख रहे तो ऐसे अब मैं भी देख रहा हूं आज तुम्हारे ऊपर में इनकी कृपा हो गई ये समझ लो किसी के ऊपर से कृपा नहीं करते हैं कैसे कृपा करते हैं वो कृपा करते हैं व्यनक्ति अपने को प्रकाश करते हैं एक महंत गुरु के रूप में दीक्षा इत्यादि के द्वारा अपने साक्षात उपदेशों के द्वारा और दूसरा चैत्य गुरु के रूप में
आचार्य
के रूप में चैत्य गुरु के रूप में वो दया कर सकते हैं। ये भी भगवान की महान कृपा है, दया की कृपा के कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए आज आपको भीतर से ही ये कृपा कर रहे हैं, ऊपर से भी कृपा आप करेंगे, क्या कर सकते हैं उनको शांत कराए। इसके बाद में सातों दलों में नित्य होकर करके अब फिर एक हफ्ते होकर के उन्होंने नित्य किया। महाप्रभु जी आएंगी, राधा जी जब चलेंगे तब चले, नहीं तो वृंदावन में जाकर के मैं क्या करूंगा यदि श्रीमती राधिका ही नहीं गई। इस प्रकार से वो धीरे धीरे चलते हैं, कोई कोई भगवान स्वरूप।